विभव। सौभाग्य भी बहु तो के पितामह, आपने कल रात को शपथ ले रखी है कि मैं पांडवों को नष्ट करूंगा, और आज प्रभात को सुबह के समय ध्यान में उठते उठते आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। अब आपका ये वचन तो मिथ्या हो भी नहीं सकता, और ये वचन भी मिथ्या होना मुश्किल है। अब बताओ क्या किया जाए। शिष्य ने कहा कि अब क्या किया जाए। इधर उधर देखा, वो भी तो भगत थे, देखा कि सब यत्र योगे स्वर कृष्ण यत्र योगे यत्र पार्थो धनुर्भरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिं मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांधी और धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका मत अकेले का नहीं है, ये सब शास्त्रों का मत है, सब संतों का मत है, सब पुरुषार्थों का मत है कि जहाँ कृष्ण तत्व है, जहाँ एकाग्रता है, जहाँ योग है और पुरुषार्थ है, वहाँ विजय लक्ष्मी सफलता उनकी दासी होकर रहती। हा हू हा ओ हा करके बस दौड़ा दौड़ी करते, वो सफल नहीं होते। सफलता के लिए तुम्हारा चित्त शांत चाहिए, तुम्हारे चित्त में कृष्ण तत्व का ज्ञान चाहिए। तो भीष्म पितामह जैसे आदमी भी कृष्ण का, चलो कृष्ण की मर्जी ऐसी है, ये सब कृष्ण के खेल है। अब जो कृष्ण की मर्जी, हम अपनी प्रतिज्ञा हटा लेते हैं, पांचों बाण दे दिए द्रौपदी को। तो कृष्ण आए कि दादा तुमने अपनी प्रतिज्ञा हटा दी, धन्य हो। जब तुम्हारी मर्जी है मैं प्रतिज्ञा अपनी हटा लूं, तुम्हारे कारण मैं झूठा देखूं तो कोई बात नहीं। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मेरे कारण झूठे देखोगे तो कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे कारण भी झूठा होने को राजी हूं। कृष्ण ने भी शपथ उठाई थी कि मैं हथियार नहीं लूंगा। बोले अब दादाजी मैं भी हथियार ले लूंगा, चलो मेरा भगत झूठा तो मैं सच्चा कैसे, मैं भी मेरा भगत जब मेरे लिए मिटता है तो मैं भगत के लिए मिटता हूं। आप देखो कि बाह्य रूप तो ये है और आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि तुम्हारा मन यदि प्रभु के लिए मिट जाता है तो प्रभु का प्रभुपना, जीव यदि ईश्वर के लिए मिटता है तो ईश्वर जीव के लिए भी मिट जाता है और ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का कोई भेद नहीं रहता। जब हम जीव बने हैं तब वो ईश्वर है, तुम जीव खो जाओ तो वो ईश्वर नहीं बनेगा, वो आत्मा हो जाएगा। धर्म की गहराई समझो तो कोई संप्रदाय अलग अलग है, विवाद हो ही नहीं सकता। सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अब केशव चार भुजा वाले को और मुकुट वाले को कहोगे तो फिर गड़बड़ है। वासुदेव वही रखने वाले को जो सब में बस रहा है, वो वासुदेव है। जो सबको आकर्षित कर देता है वो कृष्ण है। जो सब में रम रहा है वो राम है। फिर श्री कृष्ण ने भी युद्ध के मैदान में कहा था कि हथियार नहीं उठाऊंगा, तो रथ का पहिया उठाया। विषम पिता मेरे को हंसी आ गई, बूढ़ा विषम को भी हंसी आ गई कि क्या कहता है, तूने कहा था कि हथियार नहीं उठाऊंगा। ओम हो ओम। तो जहां कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, और जहां पुरुषार्थ को ठीक से समझने वाला, प्रश्न उत्तर शंका समाधान करके सही क्या है इसको जानने वाला व्यक्ति रहेगा, वहां विजय होगी। एक पंडित जी थे, कथा करते थे। लोग बड़े श्रद्धा से तालियां मारते थे, गायां गाते थे, चौपाइयां दुराते थे, बड़े आनंदित होते थे लोग। पंडित को हुआ कि इतने दिन से कथा सुनते लेकिन इनके जीवन में देखो तो कुछ चेंजिंग नहीं आती, क्या बात है। ये कथा सुनते हैं कि केवल भावुकता का सुख लेते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं कि बुद्धि को भी उसमें प्रविष्ट करते हैं। तुम्हारा मन एक जगह लगा और तुमने बुद्धि नहीं लगाई ना, तो आप सफल नहीं हो सकते ठीक से। इसीलिए भगवान कहते मनोबुद्धि, मन और बुद्धि दोनों मुझ में अर्पण करो। मन से तो मेरा मनन करो और बुद्धि से मुझ में स्थिर होने का उपाय दूंगा। पंडित ने देखा कि एक बुद्धि भी लड़ाते हैं कि केवल मन से सुन लेते हैं, थोड़ी देर आनंदित हो जाते हैं, तुमने यदि मन से कुछ सुन लिया और मन से यदि खुशियां मान ली तो वो खुशी तुम्हारी शाश्वत नहीं रहेगी, वो ज्ञान तुम्हारा शाश्वत नहीं रहेगा। लेकिन सुने हुए को जब तुमने विचार और बिठाया तब वो बुद्धिगत हो जाएगा, बुद्धिगत हुआ तो स्थिति हो जाएगी। तो विजयादशमी वही होती है। अर्जुन शिष्य नहीं हुआ, अर्जुन ने तमाम प्रश्न पूछे हैं। अगर संतोषकारक जवाब आता और लगता है कि कृष्ण के मार्गदर्शन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, तब बोलते कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्य हुआ मैंने सब बात मानने को राजी हो गया। पहले तो प्रश्न किए, उत्तर किए है, और एक एक प्रश्न अर्जुन का ऐसा है कि पूरे मानव समाज का प्रश्न है, और प्रश्न का उत्तर भी ऐसा है कि पूरे विश्व के लिए उसके उत्तर है। तो जहां इस प्रकार की मेघा होती है, जहां इस प्रकार का शिष्यत्व होता है और कृष्ण के प्रकार का गुरुत्व होता है, वहां विजय कोई बड़ी बात नहीं। संसार की विजय तो ठीक है, वो तो उनके चरणों में रहती है। एक मस्तराम बाबा थे, परमानंद भंडार के गुरु मस्तराम बाबा, सिंधी जगत में मशहूर थे। परमानंद भंडार शिकारपुर के थे, अभी देहांत हो गया, अभी अभी थोड़े समय में। मस्तराम के चरणों में एक राजा आया, ताज रखकर बोला कि बाबा जी तुम्हारी कृपा से मुझे बस राज मिल गया, जो चाचा ने छीन लिया था खटपट करके, आपका प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेकर गया ना, मेरे को राज मिल गया। वो मस्तराम बोलते है जा रहे झूठा है। बोले नहीं गुरु जी, आपकी कृपा से मिल गया, आप ही ने तो दिलाया। बोले मेरी कृपा से साले तेरे को नेश्वर राज क्या, मेरी कृपा से तो तेरे को मैं मिल जाता, ये तो मेरी दासी की कृपा हुई है। तो जो ब्रह्मवेता है अथवा जिसने आत्मराम पा लिया है, उनके मनोती मानने से, उनका आशीर्वाद लेने से, उनका दर्शन करने करके जाते तो संसारी सफलता मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ तो लक्ष्य है ऋषि का कि सच्ची सफलता तो वो है कि एक बार मिल जाए तो फिर असफलता का कभी मुंह देखने को न मिले। यल्लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचारते। जिसको पाकर उसे बहकर कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख भी तुम्हें चलित न कर सके, वो है आत्मलाभ। हो अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण के इस आत्मलाभ को पाल, ये परम विजय है, और ये परम विजय कर लिया तो बाहर की विजय तो खेल मात्र है। और ये जरूरी नहीं कि बाहर की कोई विजय हुई तो तुम सदा के लिए सुखी हो गए, ना। तुमने राज जीत लिया तो सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, तुमने अमुक शत्रुओं को जीत लिया तो भी सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, अमुक मकान दुकान जायदाद तुमने संपत्ति श्रेय पा लिया तो भी तुम सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि मौत सब छीन लेगी। जब क्रोध आएगा तो सब फीका हो जाएगा, जब काम सताएगा तब फीका हो जाएगा, और जब मौत आ जाएगी तो सब सदा के लिए फीका हो जाएगा। तो सच्चा विजय तो यह है कि तुम्हारे जो विकल्प है, तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों मन की दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति को ज्ञान शक्ति देखती है, ज्ञान शक्ति का ज्यादा उपयोग करोगे तो ज्ञान शक्ति का पीरियड बढ़ जाएगा, संकल्प शक्ति कम हो जाएगी। तो संकल्प शक्ति जब कम हो जाएगी तो पुरानी आदतें, जीव भाव की आदतें, राग की आदतें, ये जो आदतों पर विजय पाना है, तो जिस समय वो ऐसा भड़का आता है उस समय तुम्हारी ज्ञान शक्ति का उपयोग करके संकल्प शक्ति को रोको। तो संकल्प और विकल्प शक्ति जब रुकेगी तो उसमें आध्यात्मिक बल चमकेगा और आप अपने कृष्ण तत्व को, अपने आत्म तत्व को ठीक से अनुभव कर सको। ओम 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 राजसी लोगों को तो पाप में ही सुख दिखाती है, राजसी लोगों को लोभ में और काम में सुख दिखाती है, भक्तों को गीत और भजनों में सुख दिखाती है, मेरा दर्शन नहीं करने देती। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न होते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वे इस माया को तर जाते हैं। ये संकल्प और विकल्पों के जाल को पार कर लेते हैं, वे शांत होते होते परमात्मा दीदार कर लेते हैं, वे मौन को उपलब्ध हो जाते हैं, मौन का अवलंबन लेते हैं, इंद्रियों का अल्प भोजन करते हैं, देखना कम, सुनना कम, बोलना कम, सोचना कम, लेना कम, देना कम, बिन जरूरी वे कुछ न प्रवृत्ति करते हैं और समय बचाकर आत्म ध्यान में रहते हैं। चित्त प्रसादात, उन्हें उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में तत्र श्री विजय भूते द्रुहा नीतिर मतिर मम, ऐसे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक विजय हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में आत्म साक्षात्कार की विजय हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में जन्म मरण के चक्कर को तोड़ने की विजय हो जाती है। शत्रु की पीठ तोड़ दी तो क्या बड़ी बात की, कोई मकान और हवेली को तोड़ के गोले से तोड़ दिया तो क्या बड़ी बात है। साधक तो ध्यान के गोले से अपनी कल्पनाओं के महलों को तोड़कर परमात्मा में दिखता है। करने के बाद जो शक्ति एकत्रित हुई है उस शक्ति को खर्च करना विजय के लिए, कोई धन पाने को विजय समझे, कोई राज्य पाने को विजय समझे, लेकिन साधक तो अपने प्रभु पाने को ही विजय समझता है। आज तो नया दशहरा जीवन में लिया, सच्चा विजय तो यह है कि तेरे संकल्प विकल्प शांत होकर हृदय में छुपे हुए जो परमात्मा है, हृदय में छुपे हुए जो अंतर्यामी है, उसका साक्षात्कार हो जाए। भीतर ही भीतर निर्भयता की आवाजें आने लगे कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, ऐसी विजय घोष हो जाए। मैं जन्म में मरने वाला ये देहधारी शरीर नहीं हूं, मैं संकल्प और विकल्प करने वाला मन नहीं हूं, मैं काम और क्रोध में धक्के खाने वाला चित्त नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। मेरा सारे विश्व में कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि मैं अद्वैत आत्मा हूं। ऐसा विजय का डंडा मार तेरे अनुभव के नगारे पर, भीतर ही भीतर से शिवो हम सोहम के गीत गूंज, आनंदो अहम चैतन्यो अहम शिवो अहम शांतो अहम, मैं अमर आत्मा हूं, ऐसी विजय पताका आज पाने के लिए तू प्रतिबद्ध हो जा, कदम रख ले। कई जन्मों में तूने संसारी विजय पाई थी, कई जन्मों में तूने राज्यों की विजय की थी। है मन, अब तो तू संकल्प और विकल्पों की विजय कर ले। तुम्हारे संकल्प और विकल्प तुम्हें भले बाहर की विजय करने को दौड़ाए, लेकिन मनु को कहो कि बाहर की विजय और पराजय जिस परमात्मा की सत्ता से होती है, वही आत्मा मेरा, परमात्मा ही मेरा वास्तविक में आराम का स्थान है। आराम चाहिए तो राम में है, बाहर की विजय में आराम नहीं, बाहर के धन में आराम नहीं, बाहर की सत्ता में आराम नहीं, राम की सत्ता में आराम है। एक बार अर्जुन और हनुमान कुछ चर्चा कर रहे थे। हनुमान ने कहा कि हमने सेतु बांधा, बड़े बड़े पत्थर लगाए, पुल बांधा और रावण को इस प्रकार सजा दी, ऐसा ऐसा विजय किया। अर्जुन कहता है पागल कहीं के, और बात तो तुम्हारी हमें ठीक लगी, लेकिन पुल बांधने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठाने की मजूरी क्यों की? मुझे जैसे कोई बुला लेते, मुझे जैसे कोई याद कर लेते, मैं बाणों की पुल बांध देता घड़ी भर में। हनुमान ने कहा कि बाण की पुल तो बांध लेते आप, लेकिन वो पुल मेरा बोझा नहीं सह सकती, और मेरे जैसे तो कई वानर हैं, मेरे जैसे तो और कई सैनिक हैं। सेना को पसार होना था, लकड़ा पुल बनाने की या बाणों की पुल बनाने की कोई फैशन नहीं थी, हमें तो पूरी सेना पसार करनी थी। अर्जुन बोलता है कि सेना पसार हो जाती। हनुमान बोलता है तुम पुल बना के दिखाओ, मैं यदि पसार हो जाऊं और तुम्हारा पुल न टूटे तो मैं समझूंगा कि सेना भी पसार हो सकती है। अर्जुन ने समुद्र पर बाण फेंकने शुरू किए, देखते ही देखते पुल बना दी। हनुमान जी रूप करके जंप मार के चलने लगे, पुल हिलने लगी, अर्जुन घबराए। अर्जुन ने मन ही मन उस कृष्ण तत्व का, उस परमात्मा का ध्यान किया, पुल हिली लेकिन डूबी नहीं। हनुमान ने खूब जोर मारा लेकिन पुल टस से मस नहीं हुई। हनुमान ने कहा कि तुम्हारी पुल तो बड़ी मजबूत थी, पहले तो जंप मारने से डामांडोल हो रही थी, फिर एकाएक क्या हुआ पता नहीं। इतने में श्री कृष्ण आ गए। हनुमान ने कहा कि हाँ, तूने जब कृष्ण का ध्यान किया है, संकल्प तेरा वहां पुल के नीचे श्री कृष्ण तत्व वहां काम कर रहा है, ये तेरे संकल्प के बल से रुकी है, तेरे बाणों के बल से नहीं रुकी। तब अर्जुन कहता है कि वो पत्थर का पुल भी तुम्हारे फेंकने के कारण नहीं रुका है, तुम्हारी श्रद्धा और संकल्प के बल से ही रुका था। कृष्ण दोनों की बात को अनुमोदन देते हैं और अपनी पीठ दिखाते हैं कि जो स्थूल जगत में सत्य बुद्धि रखते हैं उन भक्तों को मैं खबर देता हूं कि जब कृष्ण कृष्ण किया तो पुल के नीचे मैं आ गया था, पुल को संभाला था। अब जिसकी पुलिया को, जिसके जीवन की पुलिया को कृष्ण संभाल ले, उसको विजय होने में क्या आश्चर्य है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर् नमः। संजय का मत नहीं, ये तो सब शास्त्रों का मत है, सब महापुरुषों का मत है कि जहाँ वो परमात्मा चेतना है और जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ विजय श्री और स्थायी नीति रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कई विद्वान लोग इस श्लोक का जरा आदर कम करते हैं, लेकिन इस श्लोक में सब शास्त्रों की खबरें मिलती है। संजय ने कहा है, लेकिन संजय के घर की बात नहीं है, संजय के केवल मन की दिल की बात नहीं है, ये तो सबके दिल की बात है कि जहाँ चेतना समस्त विश्व का। संजय ने एक श्लोक बनाकर गीता को सचमुच में गीता के स्थूल भाव को समझने वालों को एक इशारा दे दिया है कि कृष्ण माना ओ चराचर जगत को जो धारण की हुई शक्ति है, उस शक्ति के निकट जो होता है, उस शक्ति का जिसको आधार है, उसके पास विजय और श्रेय है। जिस देश को, जिस समाज को, जिस व्यक्ति को, जिस राष्ट्र को मन की शक्ति उपलब्ध हो गई, जिस व्यक्ति को मौन की शक्ति उपलब्ध हो गई वो हजारों व्यक्तियों से अलग होकर चमकता है। इसी अखबार में एडवर्टाइज आई कि एक ऑफिसर चाहिए सूक्ष्म यंत्रों का मैनेजमेंट करने वाला, अर्थात वायरलेस कंपनी में एक व्यक्ति की जगह है। खूब भी इकट्ठी हो गई, अच्छी बढ़िया पोस्ट थी, लोग अर्जी पत्र और अपनी योग्यता पत्र और प्रमाण पत्र और लेकर बैठे हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई बीड़ी फूंक रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, बड़ा कोलाहल जमा था, खूब भीड़ थी। बस चेचे चेचे करते ही रहे, सब बाह्य पुरुषार्थ में लगे थे, सबको कोई ऑफिसर का तोड़ करने की कोशिश थी, किसी की लागलग लगाने की कोशिश को सोच रहे थे। बड़ी कतारें थी, एक नौजवान उन कतारों से अलग एकांत में बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ सोच भी नहीं रहा था, बड़ा शांत बड़ा स्थिर चित्त। आवाज आई कि हम एक ऐसे युवक को पसंद करना चाहते हैं कि जो बड़ा शांत हो और जिसकी पहली दृष्टि हो, वो आ जाए, विजय पत्र तैयार है, ले जाए। इतनी भीड़ में तो ये सूक्ष्म यंत्रों का वायरलेस का जरा आवाज सुना नहीं। जो शांत चित्त था वो जवान गया और जो भीतर गया तो दिन हार में प्रमाण पत्र दे दिया और उसको पसंद कर दिया गया, चुन लिया गया। वो विजय का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आया, लोगों को कहा था भीड़ की जमाई है, मैं सिलेक्ट हो गया। लोग गुस्से हुए, देर से आया था, दूर खड़ा था, ये क्या लागवग हुई, कैसे विजय हुए। उसने कहा कि मैं लागवग तो नहीं की, जाने के पहले तुम सबका मैंने ख्याल किया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम कोई आदेश को सुन ही नहीं रहे थे। सूक्ष्म यंत्रों से आवाज ध्वनि निकली कि हम उसी को पसंद करना चाहते हैं जो सूक्ष्म ध्वनि को सुन ले, जो सूक्ष्म आदेशों को सुन ले, वो तुरंत आ जाए पहले और उसे विजय पत्र मिलेगा। तो मैंने आदेश को सुन लिया, तुम लोग तो बाहर मुक्ते गप सप में थे, आदेश नहीं सुन पाए, उसी लिए तुम रह गए। परमात्मा भी सूक्ष्म आदेश दिए जाता है, परमात्मा भी सदा विजय पत्र हाथ में लिए हुए इंतजार कर रहा है, लेकिन हम इतने बहिर्मुख हो गए, इतने भीड़ में चले गए, इतने बाहर की सफलताओं में विजय में विजयादशमी में ढूंढने लग गए कि आज तक कई विजयादशमी आई और चली गई, लेकिन विजय पताका नहीं मिली। मिल गए तेरी गुड़िया की पताका, मिल गया थोड़ा धंधे में विजय, मिल गया थोड़ा यश में विजय, मिल गया थोड़ा राज्य में विजय, और अपने को खुश मानते हैं, लेकिन अंदर बिच्छू काट रहे हैं, अंदर मौत का भय जारी है, अंदर प्रतिकूलता का भय, विरोध का भय जारी है, बीमारी और प्रतिद्वंद्वों का भय चालू है। ये वास्तव में सच्ची विजय नहीं है। सच्ची विजय तो यह है कि तुम एक बार विजय को उपलब्ध हो जाओ तो तुम्हें जगत के लोग तो क्या 33 करोड़ देवता मिलकर भी तुम्हें पराजय न कर सके, यही सच्चा विजय है। और विजयादशमी संदेश देती है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्भरः। लौकिक विजय भी वही होती है जहाँ पुरुषार्थ और चेतना होती है, आध्यात्मिक विजय भी वही होती है जहाँ सूक्ष्म विचार होते हैं, बुद्धि की सूक्ष्मता होती है, चित्त की शांत दशा होती है, वही आध्यात्मिक विजय होती है। तो आध्यात्मिक विजय और लौकिक विजय दोनों प्रकार की विजय करने का संदेश विजयादशमी देती है। तो नवरात्रि कैसे हुए, 9 दिन के बाद 10वें दिन जो शक्ति है वो अपने कार्यों को विजय करने में लगाई जाती है। राम ने आज के दिन ही आरंभ किया था विजय पाने के लिए, शिवाजी महाराज ने भी आज के दिन ही आरंभ किया था, रघु राजा ने आज के दिन कुबेर भंडारी से 14 करोड़ अशर्फियां गिरवाई थी किसी गुरुकुल के शिष्य को भेंट देने के लिए। आज के दिन दशहरे के दिन बिना मुहूर्त लोग मुहूर्त मानते हैं, क्योंकि 9 दिन की जो शक्ति जिसके पास एकत्रित हो गई है वो जो भी कुछ करता है वो सफल हो जाता है। जिसके पास मौन की शक्ति है, संयम की शक्ति है, जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियां क्रिएट हो गई है उसके कार्य बिना चौघड़िए देखे हुए भी सफल हो जाते, बलियाना बेभाग हो छे। दुर्बल जो अच्छे अच्छे चौघड़ियों में भी करता है, दुर्बल मन की माइयां, दुर्बल मन के बच्चे, दुर्बल मन के वैवाही जब शादी करते हैं तो ग्रह मिलाते हैं, नक्षत्र मिलाते हैं, ब्रह्मन को बुलाते, हवन करते और बड़ी विधि विधान से शादी करते, फिर भी देखो लड़का और लड़कियों की लड़ाई झगड़े और लड़की माँ बाप को हरा जाती है। लेकिन सबल मन की लड़की, सबल ज्ञान की, सबल समझ वाली लड़कियां लड़कों की शादी हो जाती है बिना मुहूर्त और चौघड़िया देखने के भी, और सात्विक विचार वालों का शादी हो जाता है तो जीवन भर चलती रहती है गाड़ी बलियाना बेभाग। न एम आत्मा बलहीन न लभ्य, दशहरा ना बाड़े घोड़ो ना दौड़े तो खराब बाड़े दौड़े लो कहवत है। तो दशहरे के दिन तुम्हारा मन रूपी घोड़ा परमात्मा रूपी ग्राहक की तरफ न दौड़े तो कब दौड़ेगा। रबिया नाम की एक मुस्लिम फकीर हो गई, वो गुलाम होकर खरीदी गई थी, किसी घर में काम करती थी और जहां वो खरीदी गई थी वो आदमी बड़ा लुच्चा था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा निर्दयी था। रबिया के हाथ से थोड़ी सी गलती होती तो उसे खूब डांटता, खूब पीटता, फिर भी रबिया वहां से पलायन बात नहीं किया। एक बार तो रबिया से कुछ गलती हो गई और उस घर के मालिक ने क्या करा, अपने रबिया के हाथ ऊपर कुर्सी के पैर रखकर उस पर चढ़ बैठा और हिलने लगा और रबिया को पीड़ा देने लगा। उसी रात को रबिया अपनी टूटी फूटी उस झोपड़ी में दरारे पड़ी हुई जिस दरवाजे में उसको बंद करके रात्रि को 2 बजे रबिया पुकार रही है परमात्मा को, हे मेरे मालिक, मैं तुझे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझे चाहती हूँ, दुष्ट पाने के लिए मैं तुझे नहीं चाहती मेरे मालिक, दोजख के भय से मैं तुझे प्यार नहीं करती, सेठ परेशान कर रहा है उसकी परेशानी मिटाने के लिए मैं तुझे नहीं चाहती हूँ, मित्रों की वाहवा पाने के लिए मैं तुझे नहीं चाहती हूँ, गहने और कपड़े पाने के लिए मैं तुझे नहीं चाहती हूँ, मैं संसार का सुख भोगने के लिए तुझे प्रेम नहीं करती हूँ, ए मेरे मालिक, बस मेरा प्रेम किसी चाह का गुलाम न हो, मेरा प्रेम निश्चाह हो, मेरा प्रेम बस प्रेम ही हो, हे मेरे मालिक, मेरे जीवन का तू ही सहारा हो, मेरे विजय, मेरे जीवन की विजय तेरी प्राप्ति हो और मेरी कोई विजय दशमी न हो, मेरे जीवन की विजय बस तू ही हो, तेरे सिवा मुझे सब मिथ्या बासे, तेरे सिवा सब मुझे खेल बासे, तेरे सिवा सब मुझे स्वप्ना बासे, ओ मेरे मालिक, बस मेरी प्रीति, बस तेरे कारण ही मेरी प्रीति रहे, मैं तुझ में हो जाऊं तू मुझ में हो जा मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा ताला, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे यार। इस प्रकार तबली रबिया गुनगुना रही थी, एकाग्र हो गई, उसके विकल्प शांत हो गए, उसके प्राण शक्ति ऊपर उठी, आज्ञा चक्र तक पहुंची, आज्ञा चक्र से अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश फैल गया उस झोपड़ी में। रबिया का मालिक बाथरूम गया, देखा कि इस झोपड़ी में कोई प्रकाश है और कुछ बोल रहा है, कोई एकाएक कभी प्रकाश का झपकारा होता है और रबिया उससे कुछ बातें कर रही है। मालिक ने सोचा रबिया का कोई होगा दोस्त, कोई यार, कोई बॉयफ्रेंड होगा, पकड़ू उसको चोटी करूं पिटाई। धीरे धीरे आया, देखा दरार से कि रबिया अकेली और कह रही, मेरे यार, मैं तुझे दुख मिटाने के लिए प्रार्थना नहीं करती, दुख तो प्रारब्ध से मिट ही जाएगा, शरीर मिटेगा तो दुख मिट ही जाएंगे, शरीर मिटेगा तो बीमारियां मिट ही जाएगी, शरीर मिटेगा तो धन और निर्धनता सब साथ में चली जाएगी, मेरे मालिक, मैं धन पाने के लिए तुझे प्यार नहीं करती, दुख मिटाने के लिए तुझे प्यार नहीं करती, बस तुझे ही पाने के लिए मैं तुझे प्यार करती हूँ, मेरे मालिक, तू ही मेरे जीवन का सर्वस्व रहना, मेरा चित्त कहीं न फंसे, हे मेरे मालिक, मैं उसलिए तुझे प्यार करती हूँ, मैं नरक में जाने से भयभीत होकर तुझे नहीं चाहती, मैं नरक से बचने के लिए मोहब्बत नहीं करती, दुष्ट को पाने के लिए तुझे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो तेरे को पाने के लिए तुझे मोहब्बत करती हूँ, तेरे में मिटने के लिए तुझे मोहब्बत करती हूँ। रबिया दुहाए जा रही है, कभी कभी प्रकाश देख करो सेठ चकित होते, सेठ का धैर्य खो गया, पाप नाश हो गया, सच्ची रबिया की पुकार के वाइब्रेशन सेठ के हृदय को और पापों को धो डालते हैं। सेठ द्वार खोलकर रबिया के पैरों पे गिर पड़ता है कि रबिया तू मुझे माफ करना, मैंने आज तुझे खूब सताया था, उसीलिए तू रो रही है, उसीलिए तू उसको याद कर रही है। रबिया कहती है, नहीं सेठ जी, तुम्हारी कृपा है कि मेरी जगत में आसक्ति नहीं हो रही है, तुम्हारी मेहरबानियां है कि मैं परमात्मा को, खुदा को याद कर सकती हूँ। मैं तो अपना ऋण चुका रही हूँ, किसी जन्म में तुम्हारा लिया होगा, खाया होगा, तुमको परेशान किया होगा, अब बदला पूरा हो रहा है, अब मैं तुम्हें सजा मिले ऐसा नहीं पुकार रही हूँ, मैं तुम्हारे घर से भाग जाऊं ऐसा नहीं पुकार रही हूँ, मैं मर जाऊं ऐसा भी नहीं पुकार रही हूँ, मैं तो उस परमात्मा में, खुदा में शांत हो जाऊं, बस यही मेरी पुकार थी मेरे सेठ जी। आप निश्चिंत रहिए। सेठ का हृदय बदल गया, रबिया के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। रबिया बड़ी ही शर्मिंदी हो गई कि सेठ, आज तक तो तुम नौकरानी समझ के डांटते थे, फटकारते थे, और अब जब तुम प्रणाम करते हो तो मुझे लगता है क्या प्रभु की भक्ति अब छूट जाएगी, मेरी वाह वाह होने लगी, मैं उस मालिक को तो नहीं भूलूंगी। सेठ बोलते कि रबिया तू मेरी गुरु है। रबिया को गुरु मनाकर मानकर उस सेठ ने अपना जीवन धन्य किया। वही रबिया मस्त फकीर हो गई। वेदांत कहता है कि तुम्हें विजय पाना है तो बाहर कब तक घूमोगे, अब भीतर ही आ जाओ, बाहर की विजय तो तुम देख लिया। नौकरी में से मुनि में आई, मुनि में से सेठ बनाया, सेठ में से धन बड़ा, मकान बड़े, दुकान बड़े, लेकिन सोचो परमात्मा शांति बड़ी है या घटी है। यदि परमात्मा शांति बढ़ गई है तो तुम्हारी गाड़ी विजयादशमी की तरफ है, विजय की तरफ है, और अशांति बढ़ गई है तो तुम्हारी गाड़ी पराजय के तरफ है। जरा कभी कभी एकांत में बैठो, देखो विजय के तरफ चल रहे हो कि पराजय के तरफ चल रहे हो, शांति के तरफ बढ़ रहे हो कि अशांति के तरफ बढ़ रहे हो।